ओम शांति। एक जापान की घटना से चालू करते हैं। जापान में एक बार बहुत बड़ा भूकंप आया और ऐसे भूकंप वहां आते ही रहते हैं। तो ऐसे ही एक बार बड़ा भूकंप आया, बहुत लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ, बहुत इमारती नीचे गिरी और जो लोग उन्हें बचाने के लिए गए, रेस्क्यूअर टीम, वो बहुत कार्य करके, बहुत मेहनत करके जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे उनको निकाल रहे थे, एक घर से दूसरी ओर जा रहे थे। ऐसी एक टीम बचाने वालों की एक घर के पास पहुंची। वो जो घर था बहुत बुरी तरह नष्ट हो गया था। वो जो घर था उसका छत गिर गया था। तो उन बचाने वाले की टीम ने उस घर को देखा और देखा कि सब कुछ ही खत्म हो गया है। ऐसा कुछ नजर नहीं आता है कि कोई जिंदा है और जिसको बचाया जाए। तो वो एक खिड़की से कि थोड़ी सी गैप से देखते हैं कि कुछ दृश्य दिखाई दे रहा है। उससे देखते हैं कि एक महिला है जो कि ऐसी झुकी हुई है। तो वो लोग देखते हैं कि एक स्त्री है जो नीचे झुकी हुई है, परंतु ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि वो स्त्री जिंदा नहीं है, मर चुकी है। उसका पूरा शरीर कड़क स्टिफ हो गया है और वो ऐसी झुकी हुई है। पहले उनको लगता शायद वो जिंदा है, परंतु उसकी ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि पूरा छत उस स्त्री के सिर पर गिरा है और वो बहुत पहले जैसे कि मर चुकी है और हाथ ऐसे नीचे। तो वो लोग देखते हैं अभी यहां तो कोई जिंदा है नहीं, क्या करना है, आगे बढ़ जाते हैं। परंतु जो टीम लीडर होता है उसको संकल्प आता है कि कुछ तो है और वो आगे जाने के बाद फिर वापस आता है और फिर वापस आकर वो जो स्त्री है उस घर में वो प्रवेश करता है। उसे लगता है जरूर कुछ है वहां पर, ये स्त्री ऐसे की होगी झुककर। तो वो जाता है, थोड़ी सी खोज करता है और देखता है कि नीचे एक छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा जिंदा है और वो स्त्री पूरा ऐसे झुक गई है, उसके ऊपर पूरा छत गिर गया है, परंतु वो जो छोटा सा बच्चा है एकदम अंदर रखा हुआ वो जिंदा है। तो वो टीम लीडर उस बच्चे को लेता है और बच्चा रोने लगता है। एक टॉवेल से लपेटा हुआ होता है बच्चा। वो टॉवेल खोलता है तो वहां पे एक मोबाइल मिलता है और उस मोबाइल में उसको ऑन करता है तो एक मैसेज, उसने वॉइस मैसेज रहता है जो कि उसकी जो माँ है उसने रिकॉर्ड किया होता है। उसमें लिखा होता है अंग्रेजी में, दिस इज टू टेल यू दैट आई लव यू। ये तुम्हें बताने के लिए अपने बच्चे से वो कह रही है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये उस माँ का जैसे अल्टीमेट सैक्रिफाइस, परम त्याग कहो या फिर बलिदान अपने उस बच्चे के लिए। भूकंप आया, सारा घर तहस नहस हो गया, छत गिरने लगी, तो उस माँ ने खुद को नीचे कर दिया और बच्चे को नीचे, और वो पूरा छत उसके ऊपर गिर गया और वो माँ मर गई। परंतु उस बच्चे की जान बच गई। तो वो जो मोबाइल और उस पे वो मैसेज सब जगह घूमता है, ये सत्य घटना है, अभी अभी कुछ सालों पहले हुई हुई है। ये बताया जाता है कि एक माँ जो होती है अपनी संतान के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देती है। एक माँ का बलिदान, एक माँ का त्याग, एक माँ की तपस्या इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गाई हुई है। अभी अभी यहाँ पर मदर्स डे था ना, एक दो दिन पहले। एक है माँ और एक है मातृत्व, एक है मदर, एक है मदरहुड। इन दोनों में क्या अंतर है? माँ और मातृत्व में क्या अंतर है? क्या अंतर है माँ और मदरहुड में? कोई भी, कोई डिफरेंस या सेम है? माँ बनना आसान है या मदरहुड को प्राप्त करना आसान है? मदरहुड बहुत ऊंची चीज है। माँ तो कोई भी बन सकता है, माओं की संसार में कमी नहीं है। शरीर से शरीर को जन्म देना आसान है, परंतु मातृत्व बहुत ऊंची चीज है। मातृत्व बहुत ऊंची चीज है। मदरहुड इस संसार में कोई कोई है जो उस पद तक पहुंची थी, और मदरहुड के लिए मां बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मातृत्व का संबंध पालना करने से है। तो एक ब्रह्मा कुमारी अर्थात जो मातृत्व पद को जिसने पाया है, अर्थात मदरहुड को जिसने पाया है, अर्थात जो सारे जगत की माँ है, किसी एक व्यक्ति की माँ नहीं है। संसार की माँ तो एक की या दस की रहेगी, परंतु ब्रह्मा कुमारी अर्थात मदरहुड, ब्रह्मा कुमारी अर्थात मातृत्व, अर्थात जो सकल विश्व की पालना करे, जो जगत माता हो, जगत जननी हो, ये बहुत ऊंचा पद है। यात्रा करनी है उस मातृत्व तक पहुंचने की, और मातृत्व अर्थात बलिदान, मातृत्व अर्थात त्याग, मातृत्व अर्थात तपश्चर्या। माँ की इतनी तपश्चर्या नहीं है, परंतु मातृत्व की बहुत ऊंची और बहुत बड़ी तपश्चर्या है। तो हरेक को ये लक्ष्य रखना है कि मुझे क्या बनना है? जगत माता, जगत जननी, किसी एक की माँ नहीं, सर्वोत्तम माँ, और माँ अर्थात जो पालना करे, चाहे बच्चा कैसा भी हो, कितना भी कुसंस्कारों वाला हो, फिर भी उसकी पालना करे। किसी एक जैन आश्रम में, एक बौद्ध आश्रम में एक नया नया शिष्य आया, बाकी सारे शिष्य बहुत पुराने थे, पर ये जो नया शिष्य था बहुत उपद्रवी था। उसे एक बुरी आदत थी चोरी करने की, हर दिन कहीं ना कहीं से चोरी करता था। तो बाकी सभी शिष्य जो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा इसको समझाओ, इसका कुछ करो, परंतु उसकी चोरी करने की आदत वैसी ही थी। फिर आखिर सारे शिष्य तंग हो गए और उन्होंने एक लेटर लिखा और सबने साइन किया कि जब तक इसको यहां से नहीं निकालेंगे आश्रम से, हम यहां नहीं रहेंगे। तो वो गुरु कहता है अच्छा तुम लोग जा सकते हो, पर वो यहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो यही पता नहीं राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। आप सब तो जान चुके हो क्या करना है क्या नहीं करना है, पर वो तो इतना अनजान है, इतना इनोसेंट है, इतना परवश है कि उसे ये भी नहीं पता अभी तक कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप सब लोग चले जाओ तो चलेगा, मैं उसको यहीं रखूंगा जब तक कि वो सीख ना जाए, जब तक उसको समझ ना आ जाए कि चोरी नहीं करनी है, तब तक वो यहीं रहेगा। तो ये गुरु खाली गुरु नहीं है, मां है। मां अर्थात जो सबकी पालना करे। तो अपने आप को कुछ दिन पहले कुमारियों से मुलाकात, कॉलेज की लड़कियां नहीं समझो, शिव शक्ति समझो, जगत माता समझो। संसार की मुझे पालना करनी है यह समझो। तो एक मुख्य लक्ष्य है मां बनने का, मातृत्व पद को पाने का और जगत की पालना। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ और विषय पर, नारी तू नारायणी। नारायणी किसको कहा जाता है? नारायणी किसको कहा जाता है? लक्ष्मी को। अभी किसी ने लक्ष्मी का अनुभव सुना है ना? हमें तो खाली लक्ष्मी शब्द सुना ही आया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। नर नारायण बने और नारी नारायणी अर्थात लक्ष्मी। तो क्या हम करें जिससे सतयुग में लक्ष्मी ने अभी लक्ष्मी बनना है, इधर वो अपने आप बन जाएंगे यहां। आज की क्लास में हम नारायणी क्या होती है, लक्ष्मी कौन होती है, इसकी चर्चा करेंगे। संसार में जो लक्ष्मी का चित्र दिखाया जाता है, सबने देखा है संसार का चित्र कैसा होता है, कैसा होता है, किस पे बैठी होती है? कोई लक्ष्मी का चित्र है इधर? कमल पर बैठी होती है। और क्या होता है? हाथ और हर्षित मुख और कलश और वरदानी हाथ और कपड़े कौन से रंग के होते हैं? कौन से रंग के कपड़े होते हैं? लाल रंग के कपड़े और कंबाइंड स्वरूप वो नहीं, यहां संसार में जो लोग भक्ति करते हैं लक्ष्मी की उसका पूछ रहे हैं। क्या क्या होता है? उल्लू होता है, हाँ, और उल्लू उसका वाहन है आउल। तो लक्ष्मी की टोटल 7 निशानियां हैं, 7 अलंकार लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला, लक्ष्मी कमल पर विराजमान है। कमल अर्थात संपूर्ण पवित्रता। यदि सतयुग में लक्ष्मी पद पाना है, यदि सतयुग में नारायणी बनना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता का भी आधार है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का भी आधार है 8 स्तंभ। जिसकी अभी अभी कहीं और हमने चर्चा की थी, पर फिर से संक्षिप्त में, यदि नारायणी बनना है, यदि लक्ष्मी बनना है, तो सबसे पहले कमल पर विराजमान होना होगा। कमल अर्थात संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकार, संपूर्ण कामचित, संपूर्ण ब्रह्मचारी, संपूर्ण ब्रह्माचारी। जहां जहां ब्रह्मचर्य का खंडन होगा, पवित्रता नहीं रह सकेगी। इसके लिए ब्रह्मचर्य के सूक्ष्म रूपों को समझना होगा। यदि नारायणी बनना है तो ब्रह्मचर्य इतना सूक्ष्म है कि उसके सिद्धांत छोटी छोटी चीजों से भंग होते हैं। कोई कहे हम तो संपूर्ण पवित्र है, परंतु ब्रह्मचर्य में ढीले हैं, तो वो पवित्रता नहीं टिक पाएगी। आठ ऐसी चीजें हैं ब्रह्मचर्य से जुड़ी। सबसे पहला देखना। यदि हमारे देखने में दैहिक दृष्टि है, देह को देखती है, देह के सौंदर्य को देखती है, जो वास्तव में है नहीं, भ्रम है, तो ये ब्रह्मचर्य का खंडन है। आंखें क्या देख रही है? यदि आंखें आत्मा को न देखकर देह की तरफ चली जाए, अव्यक्त मुरली है 71 की, जिसमें बाबा ने कहा है शरीर विष, शरीर सांप है और सांप में विष होता है। इसलिए एक अभ्यास जो निरंतर करना है वो है सब आत्माएं हैं, ना स्त्री है ना पुरुष, सब आत्माएं हैं। और ये देह यदि सांप है तो आत्मा मस्तक मणि है, चमकते हुए मणि को ही देखना है और उसका ही अभ्यास करना है। जैसे अभी अभी यहां अभ्यास किया था कि सामने जो आत्मा बैठी है केवल आत्मा है, बस कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, यह सर्वोच्च अवस्था है। और जब नीचे आते हैं साकार में तो सभी भाई बहन है, और कोई दूसरा संबंध नहीं हो, किसी को विशेष भाई नहीं बना देना, चाचा मामा काका ये सारे लौकिक संबंध है। यहां पर एक ब्रह्मा कुमार और एक ब्रह्मा कुमारी, इनके बीच में केवल और केवल भाई और बहन बस, और कोई संबंध जोड़ा तो माया आएगी, विकार आएंगे, वासनाएं आएगी। ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, आकर्षण लगाओ, एक्सचेंज गिफ्ट्स मैसेजेस सब चालू होगा, बार बार फोन कॉल्स, चैटिंग, सारी माया चालू। देखना पवित्र दृष्टि। दूसरा स्पर्श, स्पर्श करना, शरीर को स्पर्श करना, शरीर के स्पर्श से आत्मा में आकर्षण उत्पन्न होता है। इसलिए मिलना भी हो तो दूर से। संसार में बहुत सारी साध्वियां हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनके बहुत कड़क नियम होते हैं। कोई कोई यदि यहां पुरुष बैठा है तो 40 मिनट तक वहां नहीं बैठेगी, क्योंकि वाइब्रेशन से। जैन साध्वियां क्यों इतने कठोर नियम बना रखे हैं? क्योंकि अनुभव ये कहता है कि संसार में द्वापर युग से अब तक जो आत्माएं गिरी है नीचे, वो इसी काम विकार के कारण गिरी है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब पहली बार स्त्रियों को उन्होंने अपने संग में परमिशन दी आने की, उन्होंने कहा था मेरा ये संग 5000 वर्ष तक चलता, परंतु क्योंकि अब स्त्रियां आ गई है तो केवल 500 वर्ष चलेगा। 500 वर्ष के बाद बौद्धिज्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और वैसा ही हुआ, 500 वर्ष तक चला, सारे विश्व में एक ही धर्म था, बौद्ध धर्म बस। फिर धीरे धीरे बाहर, भारत से बाहर गया, और उधर कुछ नेपाल और ज्यादा से ज्यादा चीन और जापान तिब्बत में चला गया, इधर नहीं रह पाया ज्यादा। परंतु भगवान के इस यज्ञ में स्त्रियां ही सबसे आगे, उन्होंने जो कहा था वो भगवान ने पूरा खंडन कर दिया, यहां उन्हीं को आगे रखा है। परंतु हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि द्वापर से अब तक जो भी योगी और योगिनी, सन्यासी और सन्यासिनी, फादर्स और नन्स, क्रिश्चियन धर्म, रोमन कैथोलिक सेंट्स, सूफी सेंट्स, जितने योगी और तपस्वी हुए हैं, वो सब गिरे हैं नीचे। कहां से गिरे हैं? इसी मैत्री से। चालू तो बहुत अच्छे से की थी, सेवा का संबंध था, पर धीरे धीरे विकार आ गए, स्पर्श आ गया। तो पहला देखना, दूसरा स्पर्श करना, तीसरा साथ साथ खेलना, साथ साथ खेलना। वो खेल स्थूल हो सकता है या तो मोबाइल का भी हो सकता है, मैसेजेस का हो सकता है, उसमें सारी बुद्धि। चौथा प्रशंसा, बहुत प्रशंसा करना, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे गुण है, ये सेवा बहुत अच्छा करता है, और प्रभावित हो जाना और आकर्षित हो जाना। संडे की मुरली कुमारी अर्थात प्रभावित ना होने वाली, आकर्षण नहीं होने वाली, आंख किसी में ना डूबे, अगर उसमें किसी की आंख डूबती है तो अपनी ही कमजोरी है। ये सारी परिभाषा है बाबा ने बताई। तो खेलने और प्रशंसा, पांचवा गुह्य भाष्य, एकांत में बैठ के बातें करना, प्राइवेट टॉक्स, लंबा लंबा समय तक फोन पर बात करना, खंडन है। उसके बाद संकल्प करना एकांत में मिलने का। महाभारत में युधिष्ठिर से पूछा गया है, यदि तुम्हारी मां बैठी है तुम्हारे साथ तो क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? युधिष्ठिर ने कहा आई एम नॉट श्योर। युधिष्ठिर धर्मराज, युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक, अर्जुन से नहीं पूछा है, भीम से नहीं, युधिष्ठिर जो धर्म का प्रतीक माना जाता है, वो भी कहता है कि आई एम नॉट श्योर। एकांत में बैठना और लंबा समय बात करना, हलचल होगी, क्योंकि जिन जिन ने ये किया वो कहां से कहां पहुंच गए। संकल्प करना समीप जाने का। अगला है अध्यावसाय, जिसको संस्कृत में अध्यावसाय अर्थात वास्तव में समीप जाना, एक्चुअल पहला प्लानिंग है और फिर समीप जाना है, और लास्ट है काम क्रिया। ये आठों में से कोई भी एक चीज अगर होती है किसी भी स्थान, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में, ऑल टाइम, ऑल प्लेसेस, ऑल सर्कमस्टांसेस, एनी सर्कमस्टांसेस अगर होता है तो वो खंडन है। तो लक्ष्मी अर्थात सबसे पहला प्रतीक है लक्ष्मी का कमल, अर्थात संपूर्ण प्यूरिटी, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मचर्य। हाँ, ब्रह्मचर्य बेस है और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, संकल्प की पवित्रता, बोल की पवित्रता, बोल ऐसे हंसी मजाक वाले ना हो जिसमें विकारों की वायु हो, ऐसे कमेंट्स ना हो, ऐसे जोक्स ना हो, ऐसे मैसेजेस शेयरिंग करना ना हो जो कि विकारी हो, ऐसे चित्र, ऐसे गीत, अश्लील साहित्य पढ़ना, देखना, वल्गर लिटरेचर, वल्गर सॉन्ग्स, मूवीज, ये सारा कुछ उसमें आएगा। पवित्रता अर्थात कर्मों की पवित्रता, पवित्रता अर्थात चलन की पवित्रता, पवित्रता अर्थात स्मृति की पवित्रता, पवित्रता अर्थात कल्पना की पवित्रता, इमेजिनेशन, फैंटेसीज, अपने संकल्पों को, विचारों को, भाव को, भावनाओं को, इमेजिनेशन को, स्मृति को, मेमोरीज को, ड्रीम्स को, सब तरफ से शुद्ध करते जाना। जो छोटे छोटे लगाव उसमें है उससे उनको हटाते जाना, नहीं तो यही लगाव काम का रूप धारण करेंगे। पवित्रता अर्थात लिखने की पवित्रता, पवित्रता अर्थात सुनने की पवित्रता, पवित्रता अर्थात देखने की पवित्रता, खाने की पवित्रता, बोलने की पवित्रता, हर चीज की पवित्रता। तो नारायणी का सबसे पहला प्रतीक है कमल, अर्थात संपूर्ण पवित्रता। दूसरा प्रतीक लक्ष्मी के ऊपर दो हाथी दिखाते हैं, चित्र देखा है लक्ष्मी का, दो हाथी दिखाए जाते हैं। हाथी प्रतीक है शक्ति का, लक्ष्मी अर्थात शक्तिशाली, स्ट्रेंथ, एक्टिविटी, बिजी रहने का एक्टिविटी भी बताया है, कमजोर नहीं, उदास नहीं, दुखी नहीं, रोने वाली नहीं, रूसना, रूठना, नाराज होना, अभी अभी रोना चालू। कौन कौन रोता है इसमें से? आंखों के आंसू से आंसू किस किस को आ जाते हैं? कोई है जिसको फटाफट आंसू आते हैं, जिसने यहीं पर रखे है आंसू बाहर बाजू में, बटन दबाओ और चालू, किस किस को आंसू आते हैं? यदि भगत माता के मंदिर में आ जाए, ठीक है, और मां से कहे हे मां मेरे दुख दूर करो, हे मां मुझे दुखों से मुक्त करो, और पर्दा खुलेगा और देखेंगी माता रो रही है, दुर्गा मां, भगत क्या करेंगे? भगत कह रहे मां मां, दुर्गा मां कह रही है बाबा बाबा, भगत भाग रहे हैं माता के पीछे, और दुर्गा मां शेर पर सवार, अष्टभुजाधारी, भाग रही है बाबा बचाओ बाबा बचाओ, और पीछे भगत मां मां मां। रोने वाले को बाबा क्या कहते हैं? कौन है रोने वाली? विधवा, और कोई कोई सुपर विधवा भी है, फटाफट रोना, किसी ने कुछ कह दिया रोना चालू, किसी ने कुछ बोल दिया रोना चालू, रोना नहीं तो फिर धमकी, हम चले घर। रूठना, रूसना, नाराज होना, रोना, फीलिंग देवी, फीलिंग देवी पता है ना, फीलिंग आती है बार बार। तो ब्रह्मा कुमारी अर्थात फीलिंग से परे, रोना प्रूफ, रूठना प्रूफ, रूसना प्रूफ, शक्तिशाली, दूसरों को सहारा देने वाली। हजारों भक्त सामने मंदिरों के और मां बैठकर रो रही है और भगत ही कहेंगे ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। भगत ही अगर धैर्य दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो कैसा चलेगा। तो देवी का, लक्ष्मी का दूसरा प्रतीक जो दिखाया है साथ साथ मूर्ति के दो हाथी बाजू से, शक्तिशाली, आध्यात्मिक जीवन अर्थात स्वयं को स्पिरिचुअल पावर से भरना है। किसी ने एक चित्र भेजा था बहुत सुंदर, दो हिरन खड़े हैं, पहला हिरन है जवान है, एक तीर लगा और नीचे गिर गया, वही हिरन अब बूढ़ा हो गया है। बाजू का चित्र, बहुत सारे तीर गड़े हुए हैं शरीर में, फिर भी खड़ा है, शक्तिशाली, मैच्योर्ड, हिलने वाला नहीं, दुखी होने वाला नहीं। कोई भी आए और बटन दबा दे खुश तो खुश, दूसरा बटन दबाए आंसू तो इधर आंसू, तीसरा बटन दबाए नाराज तो इधर नाराज। अपना रिमोट अपनी जेब में रखना है, इमोशन। लक्ष्मी अर्थात जहां इमोशनल मैच्योरिटी हो, इमोशनल कंट्रोल हो, इतना भावुक नहीं बन जाना है कि रोना चालू, आत्मा को शक्ति से भरना है, अनुभवों से भरना है, पावर से भरना है। और पावरफुल आत्मा बनेगी चिंतन से, केवल मुरली सुनाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से भी नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, चिंतन, एक एक वाक्य का चिंतन, अपनी तपस्या को बढ़ाना पड़ेगा। जो चिंतन अशरीरी अवस्था में किया जाता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। क्यों कमजोर हूं, कारण ढूंढना, क्यों रोना आता है। एक ओपीडी में बहन आई थी, हमने पूछा क्या तकलीफ है, उसने कहा रोना आता है। हमने कहा कितनी बार रोते हो, उसने कहा 28 बार एवरीडे, कैलकुलेट करके रखा है फिगर। तीसरा प्रतीक लक्ष्मी के चार हाथ है, चार हाथ अर्थात संसार में जो मान्यता है वो तो धर्म अर्थ मोक्ष काम कहा जाता है, यहां पर ज्ञान के अनुरूप ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों में ही परफेक्ट। ज्ञान में भी शक्तिशाली, ज्ञान सुनाने में भी, ज्ञान धारण करने में भी, ज्ञान समझने में भी, ज्ञान के चिंतन में भी, ज्ञान के अध्ययन में भी, ज्ञान की चर्चा में भी। इसके लिए जो भी बहनें सेंटर पर रहती है, रात में सोने से पहले अपना एक ग्रुप बनाना है दो बहनों का, और दोनों बैठकर मुरली का डिस्कशन करना है, उसके बाद ही सोना है। वो शायद सुबह की मुरली हो सकती है या दूसरे दिन आने वाली मुरली हो सकती है। केवल वरदान पढ़ लो और डिस्कस करो, हाफ एन आवर डिस्कशन होना चाहिए एवरी डे। सामने वाला बहन भी हो सकती है, कन्या भी हो सकती है, कोई भी, कोई माता भी हो सकती है। परंतु रात को सोने से पहले क्या करना है सबने, ज्ञान डिस्कशन। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है, उसके बाद ही ज्ञान स्पष्ट होगा और वो स्पष्ट ज्ञान हम दूसरों को बता सकेंगे। ज्ञान सुनाने में नवीनता आनी चाहिए, मुरली जिस तरह से पढ़ते हैं उसमें भी नवीनता, क्रिएटिविटी, ज्ञान। योग में भी नवीनता लानी है, वही योग, एक ही तरह का योग नहीं करना है, नए योग खुद करना है और अपने स्टूडेंट्स को रोज नए योग के प्रयोग सिखाने हैं। वो योग लेंगे नए नए योग, वरदान से योग की कमेंट्री तैयार करो, रोज एक कमेंट्री लिखना, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। क्या करना है, रोज एक योग की नई कमेंट्री लिखनी है। कहां से लिखेंगे, मुरली से, वरदान से, स्लोगन से। स्लोगन जो है उसको वरदान एक ड्रिल बना दो, वरदान जो है उसको एक ड्रिल बना देना। जैसे आज का वरदान है, विजयी भव, निश्चय से, निश्चय अटूट तो विजयी, ना उम्मीद नहीं होंगे हम ही, कई बार किया हुआ है, कोई भी संस्कार परिवर्तित नहीं होता है, ना उम्मीद नहीं होंगे, दिल शिकस्त नहीं होंगे। इस पर एक कॉमेंट्री लिखनी है कि मैं फरिश्ता बाबा के पास गया, फिर बाबा ने मुझे तिलक दिया विजय का, निश्चय का, नई कॉमेंट्री, और उसमें सभी जो मन की स्थिति होपलेस हो गई थी, ना उम्मीद, उसमें उम्मीदें भर दी, हाथ पकड़ा, अलग अलग कॉमेंट्री तैयार करनी है, रोज अपनी एक कॉमेंट्री तैयार करनी है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखानी है, तो उसमें नवीनता होगी। तो ज्ञान, योग, धारणाएं, जितनी जो टीचर बहन की धारणा होगी उनके स्टूडेंट्स की उतनी ही धारणा होगी। हमारी धारणा कम, हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट की हमसे ज्यादा होगी। अपनी धारणाओं को बढ़ाना है तो स्टूडेंट्स की धारणाएं बढ़ेगी। यदि हम ही अलबेले हैं, हमने ये देखा है कि जितनी टीचर का ज्ञान और योग में ध्यान है उतना ही उनके स्टूडेंट्स का ज्ञान और योग में ध्यान है। जिस टीचर का सारा ध्यान केवल सेवाओं में है उनके स्टूडेंट्स का भी सारा ध्यान केवल सेवाओं में रहता है, ज्ञान योग की तरफ नहीं रहता है। जिस टीचर बहन की प्यूरिटी जितनी पावरफुल, उनके जितने स्टूडेंट्स होंगे उसकी भी प्यूरिटी पावरफुल। जिस टीचर बहन की प्यूरिटी कम, जिसके स्वभाव में बहुत चंचलता है, बहुत चंचलता है, बहुत बात करते हैं, टॉकेटिव नेचर, स्टूडेंट्स भी ऐसे ही कमजोर होते हैं। जहां गंभीर है, सीरियसनेस है, प्यूरिटी है, वहां के स्टूडेंट्स भी वैसे ही पावरफुल होते हैं। तो जैसे हेड होगा वैसे ही बाकी सब होंगे। तो ये समझना कि ये मेरा काम है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सारी धारणाएं खुद करनी है। खुद ही अमृत वेला अगर ढीला ढाला हो रहा है, खुद ही अमृत वेला नींद में जा रहा है, तो हम दूसरों को क्या ज्ञान योग सिखाएंगे। और सेवा, चौथा, सेवा में भी नवीनता। कौन सी जगह की सेवा रह गई है उसकी प्लानिंग करनी है। कौन सा ग्रुप है लोगों का जिनकी सेवा अब तक नहीं की, बनाना है प्लान। तो लक्ष्मी अर्थात जिसके चार हाथ है, ज्ञान, परफेक्ट ज्ञान में, योग में, धारणाओं में और सेवाओं में। खाली सेवा 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 नहीं करते रहना है। एक आप सबके लिए सजेशन है, अगर हो सके तो हफ्ते में एक, महीने में एक बार, गीता दीदी से हम कहेंगे कि महीने में एक बार सारी बहनें एक जगह आए और एक दिन भट्टी करें या आधा दिन। कई जगह करते भी हैं, शायद यहां भी करते होंगे, परंतु विशेष महीने में एक दिन संडे सारी बहनें एक जगह आए, आधा हाँ जी सभी क्या राजी है? सभी कौन कहता है यस? हर महीने में एक बार सबको यहां आना है, उस दिन भोजन आप नहीं बनाएंगे, बाकी को भाइयों को काम दे देंगे, आप लोग खाली तपस्या करेंगे। महीने में एक दिन सुबह आ जाना है 9 बजे से लेके तो 1 बजे तक, और फिर शाम को हो सके तो थर्ड संडे इवनिंग इंटरनेशनल योग, और फिर वापस। उसमें एक तो क्लास होगी, कुछ ज्ञान की चर्चा होगी और कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी होगी। जैसे अभी स्पिरिचुअल एक्टिविटी की, वैसे आप अपनी नई नई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, क्रिएट करो नए एक्टिविटीज ताकि ज्ञान योग से हम भरपूर रहे, तो ही हम अपने स्टूडेंट्स की पालना कर सकेंगे, नहीं तो उनकी पालना कैसे करेंगे? खाली सेवा 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 तो ऐसे ही हो रही है बहुत, और होती रहेगी चाहे हम चाहे ना चाहे। मीडिया इतना पावरफुल है, अभी मुख्य सेवा है तपस्या की, ज्ञान और योग की। तो लक्ष्मी अर्थात चार स्तंभ, चार हाथ को पावरफुल करना है। जो है वो बहुत अच्छा, अगर सेवा पावरफुल है तो बहुत अच्छा, परंतु योग को पावरफुल करना है, ज्ञान अर्थात उसके चिंतन को पावरफुल करना है। रोज ज्ञान योग की कम से कम एक क्लास सुननी है एवरीडे, इसको नियम बनाना है। वरिष्ठ भाइयों की, दादियों की एक क्लास सुननी है और उसके पॉइंट्स निकालने हैं, खाली क्लास नहीं सुननी है, पॉइंट्स निकालने हैं। क्लास सुनी, पॉज पॉइंट लिखो, पॉज पॉइंट लिखो, पॉइंट्स लिख लिया, अब क्लास को बाजू में रखना, फिर पॉइंट्स को रिवाइज करना, तो ये काम करना है। तो चारों ही सब्जेक्ट अर्थात चार हाथ। अगला, लक्ष्मी के हाथों में कलश है। क्या है कलश? दो चीजों का प्रतीक है वो, एक तो वो खुद धन से संपन्न है और दूसरा रहम है, दान है, धन का दान कर रही है। कौन सा धन स्वयं में भरना है? ज्ञान का धन, ज्ञान का अर्जन करना है। सारी की सारी जो मुरली है उसमें से एकदम मुख्य मुख्य पावरफुल पॉइंट्स पहले ही निकाल के हो जाए। जो मुरली कल दूसरों को सुनानी है वो कम से कम हमारी 3 बार पढ़ के होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सुबह जल्दी जल्दी पढ़ ली और जाके सुना दिया। उस मुरली की स्टडी पहले दिन दोपहर से चालू हो जानी चाहिए। जैसे आज दोपहर से मुरली चालू होंगे, एक बार दोपहर में पढ़ना, फिर शाम को पढ़ना, फिर सुबह अमृत वेले के बाद फिर पढ़ना, और उसका थोड़ा सा फिर आधा घंटा तक एकांत में चिंतन करना, उसके बाद ही स्टूडेंट्स को सुनाना, ताकि हम उससे जो मुख्य पॉइंट्स है वो सारे उनको सुना दें, कहां रुकना है और कहां विस्तार करना है। ऐसा नहीं हर एक चीज का ही विस्तार करें तो मुख्य पावरफुल क्या है वो गुम हो जाएगा। जैसे आज सुबह की साकार मुरली पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है, छोटा सा वाक्य आया एक जगह, इतने सारे बच्चे मरेंगे तो बाप को खुशी होगी? बाप क्या, बाप दुखी होगा? बाप को और ही खुशी होती है, एक जगह ये भी आया है। ऐसे बाप यहां बाप की हैसियत से है, तुम यहां बच्चों की हैसियत से बैठे हो। अलग अलग बिखरे वाक्य है मुरली में। सतयुग में देवता कहा जाता है, त्रेता में देवता नहीं कहा जाता। आज की साकार मुरली जो त्रेता में है उनको देवता नहीं कहा जाएगा। कुछ कुछ ऐसे लाइन, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य पावरफुल मुरली में आते हैं जो एक बार पढ़ने से ध्यान में नहीं आएंगे, मल्टीपल रीडिंग्स बार 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 पढ़ना, तो ही हम स्टूडेंट्स की पालना कर सकेंगे ज्ञान और योग से। तो ये हो गए चार हाथ। अगला है, नहीं हम कहां थे, कलश। तो ज्ञान से स्वयं को भरना है और दूसरों को ज्ञान देना है, उस ज्ञान देने के ढंग में भी नवीनता हो। रोज स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ काम देने हैं, ज्ञान योग से संबंधित टॉपिक्स देने हैं ताकि वो लिख के लाएं, उनकी बुद्धि चले, नहीं तो आए बैठे पॉइंट्स लिखे और गए घर। और दूसरा एक चीज, उन सबको हिंदी सिखानी है। क्या करना है? हिंदी सिखानी है। भगवान जिस भाषा में बोलता है उस भाषा को सबने सीखना, चाहे वो कितना भी न चाहे, चाहे उनकी इच्छा न हो, फिर भी सिखाना है। क्योंकि जो भाव उस भाषा में है वो उसी भाषा में समझे जा सकते हैं। जैसे ही भाषा ट्रांसलेट होती है बदल जाता है। कितने विदेशी आते हैं हम देखते हैं, रोज पांडव भवन में हिंदी लर्निंग क्लासेस चलती है विदेशियों की। कितना उमंग उत्साह है, सीखना ही है, बाबा की भाषा सीखनी है। कितने विदेशी भाई मैंने हिंदी में क्लास कराते, हिम्मत कितनी है देखो उनकी। तो क्यों ना यहां पर भी जितने स्टूडेंट्स हैं सबको हिंदी सिखानी है, ताकि वो भी समझे कि क्या इसमें रस है। एक तो ज्ञान का कलश, अगला है उसका ड्रेस। कौन से रंग का है? लाल कलर का ड्रेस लक्ष्मी को दिखाया, प्लस गोल्डन बॉर्डर, वो प्रतीक है सौंदर्य का, वो प्रतीक है ब्यूटी का, वो प्रतीक है रिचनेस वेल्थ का। तो लक्ष्मी अर्थात सुंदर, और सुंदर आत्मा बनेगी दिव्य गुणों से। किसी ड्रेस से बनने वाली नहीं है वो। जहां दिव्य गुण आत्मा ने धारण की है, शक्तियां धारण की है, जितनी प्यूरिटी धारण की है, जितनी सादगी है, जितनी शालीनता है, ग्रेस। एक होता है चंचल, इधर भाग उधर भाग, एक है धीरे धीरे शालीनता। तो नारायणी लक्ष्मी अर्थात जिसमें क्या हो, प्यूरिटी हो, दिव्य गुण हो, ब्यूटी हो, स्पिरिचुअल ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी नहीं, स्पिरिचुअल ब्यूटी। आत्मा जहां ब्यूटीफुल बन जाए वो, तो आत्मा को अगली बनाने वाली जो चीजें हैं उसको हटा दे जाना। विकार, व्यर्थ, निगेटिव, दैहिक आकर्षण, फैमिलियरिटी के संस्कार, बहुत ज्यादा घुल मिलकर रहना किसी से, उसकी सारी दिनचर्या हमको पता है, इतनी ज्यादा फैमिलियरिटी। फैमिलियरिटी का नशा है बाबा ने कहा है। फैमिलियरिटी भी क्या है? नशा है, बहुत जबरदस्त नशा। सेवा का संबंध करते करते धीरे धीरे विकार वहां उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए डिटैच। ऑल रिलेशनशिप्स कैसे हो? डिटैच। नेक्स्ट है सेवेंथ, लास्ट सिक्स, उल्लू, आउल। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। उल्लू प्रतीक है, कब देखता है वो? रात में, जब चारों तरफ अंधकार हो, कंफ्यूजन हो, ऐसी कंफ्यूजन की स्टेज में देखना, अर्थात तीसरे नेत्र से देखना, अर्थात बुद्धि के नेत्र से देखना, डिस्क्रिमिनेट करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, किस संबंध को बढ़ाना है या यही स्टॉप कर देना है, या नहीं तो संबंध बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। परख लेना, उल्लू प्रतीक है परखने की शक्ति का, उल्लू प्रतीक है तीक्ष्ण बुद्धि का, शार्प आए, देख लेना कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये सार है, ये असार है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये श्रीमत है, ये मनमत है, ये परमत है, इसका वो क्या है प्रतीक। तो ऐसी अपनी बुद्धि को शार्प करना है, जो जान ले, जो स्टूडेंट आ रहे हैं किसको कितना अलाउ करना है, किसकी कितनी धारणाएं हैं वो परखना चाहिए, नहीं तो धोखा खाते हैं और फिर बाद में वही सारे ब्लैकमेल भी करते हैं। कई सारे उदाहरण हो गए यज्ञ में, फरक ही नहीं पाई सामने वाले को और बाद में उसी ने फंसा दिया। तो सबसे पहला बताया कमल, संपूर्ण पवित्रता, दूसरा बताया हाथी शक्ति स्वरूप, तीसरा बताया क्या चार हाथ, पांच, चौथा बताया कलश, पांचवा बताया ड्रेस, छठवा बताया उल्लू और सातवा क्या है, और क्या होता है लक्ष्मी को, क्या क्या होता है ताज, वो तो सभी देवियों को होता है। हाँ कदम का क्या, वो तो सभी देवियों को होते हैं, विशेष क्या है लक्ष्मी का, क्या क्या करती है, हाँ कोई भी क्या करती है, चार हाथ में से एक हाथ से तो कुछ निकलता है, एक हाथ में कलश है, बाकी दो हाथों में क्या है, वरदान। एक हाथ से क्या कर रही है, वरदान दे रही है, लक्ष्मी अर्थात जो वरदानी है। वैसे तो हमने चार हाथ बताए परंतु भक्ति मार्ग में उन चार हाथों का अलग महत्व बताते हैं, धर्म अर्थ मोक्ष काम का प्रतीक बताते, इसलिए हमने उसको ज्ञान योग धारणा सेवा से जोड़ा, परंतु एक हाथ उसका वरदान दिखाता है और दूसरा हाथ, चित्र है आपके पास लक्ष्मी का, लक्ष्मी का बड़ा अच्छा चित्र है, कमल तो पैरों, एक तो हाथ में कमल है और पैरों पर वो बैठी है, तो कमल तो हो गया, हमने बोल दिया ऑलरेडी कमल, ये लक्ष्मी का चित्र है, सबने देखा है, दो हाथी उल्लू जो यहां नहीं दिखाया है, एक कमल, दो हाथों में कमल, ये हाथ कभी कभी यहां पे वरदान है, एक जो प्रतीक है लक्ष्मी का वो है उसका नाम, सातवा है लक्ष्मी का नाम, क्या नाम है लक्ष्मी का, लक्ष्मी, लक्ष्मी अर्थात, लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी लक्ष्य शब्द से निकला हुआ है, संस्कृत के लक्ष्य शब्द से लक्ष्मी निकला है, लक्ष्मी अर्थात जिसका लक्ष्य निर्धारित है, फिक्स्ड है, क्या बनना है और क्या नहीं बनना है पहले से ही निश्चित है, वो लक्ष्मी। कितना सुंदर चित्र है लक्ष्मी का, देखा, ऐसा हमें बनना है, ये लक्ष्य रखना है। कमल पुष्प हो संपूर्ण पवित्र, चार हाथ ज्ञान योग धारणा सेवा, दो हाथी शक्ति का प्रतीक, कलश ज्ञान से भरपूर और दूसरों को दे रही है, वरदानी, अगर वरदानी जोड़ा जाए तो 8 हो जाएंगे टोटल, हाथ वरदान दे रहे हैं, और लक्ष्मी नाम, लक्ष्मी अर्थात जिसका लक्ष्य फिक्स्ड हो। अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट, बार बार एक अभ्यास है, एक चित्र के सामने जाकर बैठ जाना या देखते रहना कि मुझे ऐसा बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना बड़ा, मुझे ऐसा बनना है, उनके तरफ देखते रहना कि इतनी पवित्रता मुझे अपने अंदर धारण करनी है, नहीं तो इस पुरुषार्थी जीवन में लक्ष्य भूल जाता है। एक उदाहरण है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के जीवन में, रशिया का बहुत बड़ा ऑथर, वो एक बार ट्रेन से सफर कर रहा था, अचानक टीसी आ जाता है और टीसी पूछता है टिकट, तो वो टिकट ढूंढने लगता है, इधर ढूंढता है उधर ढूंढता है, बैग निकालता है, इधर करता है उधर देखता है, जेब में देखता है, तो टीसी कहता है ठीक है जाने दो, आपके पास टिकट नहीं है, मैं आपको जानता हूं, आप तो बहुत वर्ल्ड फेमस हो, इतना बड़ा वो ऑथर है, कोई बात नहीं टिकट नहीं रहा तो भी चलेगा क्योंकि मैं आपको जानता हूं, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं आपने रख दिया होगा। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तब तक बूढ़ा होता है, वो कहता है मैं आपके लिए टिकट नहीं ढूंढ रहा हूं, टिकट मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि कहां जाना है उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि यही मैं भूल गया हूं मुझे जाना कहां है, लक्ष्य क्या है, गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ठिकाना क्या है, किस मंजिल तक पहुंचना है, अभी हम यहां हैं, पहुंचना यहां है, कितना अंतर बाकी है, टाइम कितना लगेगा, बीच में ट्रैफिक है क्या है, और क्या पुरुषार्थ करूं जो मैं यहां पहुंचू, ये लक्ष्मी ये नारायणी है, नारी यहां है, नर यहां है, नारायण यहां है, ये लक्ष्य है, ये संपूर्ण स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, बाप समान स्वरूप है, और मैं अभी यहां हूं, अगर यही पुरुषार्थ की गति चालू रहेगी तो कब पहुंचेंगे यहां, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, गैलोप करना पड़ेगा, सब कुछ तीव्र करना पड़ेगा, अमृत वेला, मुरली, चिंतन, कर्मयोग, नुमाशाम का योग, सेवा, सब कुछ तीव्र करेंगे तब कहीं यहां पहुंचेंगे। तो लक्ष्मी अर्थात 7 हमने सोचे थे, एक एक्स्ट्रा आपने बता दिया वरदान का, तो ऐसी 8 चीजें जिसमें हो वो होगी नारायण, अच्छा ऑप्शन है।